فعينا بالحق بالخلق الأول. اب یہ ایک اور دلیل دی گئی کہ بھلا خود ہی بتاؤ ہم تھک گئے تھے پہلی تخلیق سے، پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے جو اب آگے نہیں پیدا کر سکتے، کہ دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے؟ خود ہی انسان سوچے کہ وہ خود کوئی کام کرتا ہے، حالانکہ ہم تو اتنے یعنی کمزور ہیں، پہلی دفعہ ہمارے لیے کوئی کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ اسی کو ریپیٹ کرنا؟ پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں فرسٹ ٹائم میں یہ کر رہے ہیں اس لیے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر معاف کر دینا، سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم کے لیے تو نہیں یہ کہتے، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں ایک نیا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جو انسان جیسے عاجز مخلوق ہے وہ بھی سیکنڈ ٹائم کو آسان سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کے لیے تو کوئی فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم کی بات ہی نہیں، اس کے لیے تو ہر چیز ہی آسان ہے، اس کو تم سوچتے ہو کہ وہ دوبارہ کیسے بنائے گا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ ایک شک میں ہے. مبلسون بھی کہا گیا نا، سوری الباس بھی کہا گیا نا، یہ شک، یہ شک میں پڑے ہیں، شک نے ان کے شعور کو ڈھانپ لیا. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ نئی تخلیق کیسے ہوگی، حالانکہ یہ تو اتنا ہی سمپل ہے جیسے 2+2=4 ہوتا ہے، تو ہر ایک انسان کو پتا ہے یہ اتنی سمپل چیز ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. یہ بتانا کیوں یہاں پہ ضرورت پیش آئی، اسی سے پھر ایک نتیجہ نکالا گیا. جس جو پیدا کرتا ہے، یہ بتائیں جو کوئی چیز بناتا ہے اس سے زیادہ اس پروڈکٹ کو اور کون جان سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک گھر کا ٹھیکیدار ہے، اس نے گھر بنایا، اس کو پتا ہے اس گھر میں مٹیریل کون سا استعمال ہوا، کہاں پہ اس نے کیا لگایا، کدھر سوئچز ہیں، کدھر الیکٹریسٹی کا کیسے کیا ہے، سب چیزوں کا اس کو پتا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا، اس گھر کی ان اینڈ آؤٹ سب چیز. اس کے گھر کے رہنے والوں کو نہیں اتنا پتا ہوتا جتنا اس بندے کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں. ہوا علیم بذات الصدور، ہمیں پڑھا ہوا ہوا علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے دلوں کے اندر کے رازوں کو. اور وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا دل میں گزرنے والا خیال، جو ایک لمحے کے لیے آتا ہے اور دل میں سے گزر کے یا تو دل میں جگہ لے لیتا ہے یا گزر کے چلا جاتا ہے. اور وسوسے کو انسان یا تو صرف خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سوائے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ دل میں اس کی کیا بات آئی ہے. اس وقت آپ کے بچے ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں، اولاد تو اپنے اندر سے پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں جانتی کہ میری ماں کے دل میں اس وقت کیا بات ہے، کیا خیال ہے. شوہر ساتھ رہتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے. ماں باپ جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، مگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے ہمارے دل میں سے ابھی کیا خیال گزرا ہے. ایسا لگتا ہے نا کہ انسان کے دل، اس کا دل کھل کے سامنے آ گیا، کوئی چیز بھی نہیں چھپی بھی رہی، کچھ بھی راز نہیں رہا، ایک ایک خیال کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور اس کو کیسے نہ پتا ہو؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جو جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اسی کو نہیں پتا چلے گا؟ تم نے کیسے ایکسپیکٹ کیا کہ اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی رہ سکتی ہے؟ تو یہ وسوسہ جو شیطان باہر سے ڈالتا ہے یا جو انسان کے نفس کے اندر سے اٹھتے ہیں، دونوں ہی وسواس ہیں نا. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، باہر سے خیالات ڈالتا ہے. کہا جاتا ہے شیطان اپنی تھوتنی لے کے، جیسے پگ کی آگے تھوتنی سی ہوتی نا، اس طرح لے کے انسان کے دل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ان کا بھی اللہ کو پتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جو انسان انٹرٹین کرتا ہے ان وسوسوں کو، اس کا بھی اللہ کو پتا ہے کس نے وسوسے کو اندر جگہ دے دی اور کس نے وسوسے کو ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی وہ جانتا ہے. अब जो इतना कुछ जानता है उसकी गिरफ्त से इंसान कैसे बाहर हो सकता है। और आप कहेंगे कि वसवसे कई तो हमारे अपने बस में ही नहीं होते, शैतान डालता है, इसमें हमारा क्या कसूर है। असल बात यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के बारे में उस चीज से तजावुज किया, यानी उस पे पकड़ नहीं है जो उसके दिल से गुजरी है, और वो ना उसके बारे में कुछ कहता है ना अमल करता। ठीक है, शैतान ने वसवसा डाल दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस पे पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर उसको एंटरटेन करने लगे, दिल में उसको बिठा लिया, उसको बयान करने लगे या उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया, तो फिर पकड़ है। और आमतौर पे ऐसे वसवसों की वजह से ही आपस में बदगुमानियां होती हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं। तो वसवसों को दिल में नहीं जगह देनी, अल्लाह उन वसवसों को भी जानता है। तो एज लॉन्ग एज शैतान वसवसा डालता है, वसवसा तो कोई भी आ सकता है, कोई भी ख्याल दिल में आ सकता है। और ये सुभान अल्लाह ऐसी एक, यानी दिल में ख्यालात का आना जाना ऐसी एक चीज है, शायद ही कोई चीज भी इतनी स्पीडी हो जितने ये, कि एक मिनट में सैकड़ों वसवसे दिल में आते हैं और गुजरते हैं, आते हैं और गुजरते हैं। कितने सारे आते हैं ना वसवसे हमारे दिल में, एक बात आई, दूसरा ख्याल आया, तीसरा ख्याल, इतना स्पीडी है। जुबान भी एक स्पीड तक चल सकती है, उससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती, लेकिन वसवसे जो आते हैं, एक ख्याल आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं किसको, किस वाले ख्याल को ये एक्सेप्ट कर रहा है और किसको नहीं कर रहा। जहां कहीं कोई ख्याल आप खराब करने लगे, वहीं फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया, अल्लाह की पनाह ले लें कि अल्लाह मेरा दिल तो तेरी दो करीम उंगलियों के दरमियान है, या अल्लाह मुझे इस वसवसे से बचा ले। और वसवसे तो आएंगे ही, तो यहां से पता चलता है ना कि इंसान की तो पूरी जिंदगी अल्लाह की कैसे मुट्ठी में है, कैसे गिरफ्त में है। एक हदीस में भी आता है, अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल है, इसीलिए आगे भी फरमाया ना, वनहनु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, और हम ज्यादा करीब हैं इसके, इसकी शाहरख से भी ज्यादा। शाहरख क्या है? ये जो रगे जान जिसको कहते हैं, जो हलक से के एक किनारे से कंधे तक ये जाती है, वरीद इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके कटने से मौत वाकई हो जाती है। तो तुम्हारी जिंदगी रगे जान से जुड़ी भी है ना, और इस रगे जान से भी ज्यादा हम तुमसे जुड़े हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह इतना करीब है। बाज दफा लोग बड़े दुख में होते हैं ना, वो कहते हैं हम अल्लाह को क्या पता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जितना तुम्हारा दिल तुमसे करीब है ना, अल्लाह उससे भी ज्यादा तुमसे करीब है। तो वो जो हदीस में आपको बता रही थी कि अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल है, और कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी पेशानी के बाल उसकी मुट्ठी में ना हो, कि मुट्ठी में जो चीज आप कर लेते ना वो आपकी पूरी तरह कंट्रोल में होती है। एक चीज को आप हाथ में वैसे पकड़ते, एक मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया आपने, तो कितनी आपके कब्जे में है ना, आपके कंट्रोल में। हदीस में है कि कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी पेशानी के बाल उसकी मुट्ठी में ना हो, और वो इनके साथ है जहां कहीं भी हो। हुआ माकुम आईना माकुम, तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं पे भी हो, इतना करीब है। और साथ भी ऐसे नहीं कि कहीं दूर, इतना ज्यादा करीब है कि ये तुम्हारी रगे जान जो तुम्हारी लाइफ लाइन है, जिसको आप लाइफ लाइन कह सकते हैं, लाइफ लाइन से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में जो अभी बात आने वाली है वो इतना तुमसे करीब है कि वो उससे भी पहले जानता है। वो उन उकसाहटों को जानता है, वो उन वसवसों को जानता है, वो जिस दिल में आने वाले ख्यालात को जानता है। कितने इंसान गौर करे तो कितनी इस बात से वो डर जाता है कि वह ना अलहमु, हम जानते हैं, पता नहीं दिल में ख्यालात तो क्या क्या आते रहते हैं। कई ख्यालात ऐसे होते हैं कि इंसान किसी को बयान भी नहीं कर सकता, ये ख्याल मेरे दिल में आया, किसी को पता चल रहा तो वो कहे कि अच्छा ये ऐसे भी सोचता है। तो अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ने ये पर्दे रखे हुए, मगर अल्लाह जानता है। जब उसने फरमा दिया कि नहनु अकरबु इलैही, मैं इतनी ज्यादा करीब हूं, हम इतनी ज्यादा करीब हैं इससे, तो आज इस कुर्ब को महसूस करने की जरूरत है कि उसकी प्रेजेंस को फील किया जाए कि अल्लाह मेरे से इतना करीब है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही ना कि या अल्लाह तू दूर इतना है कि अर्श तेरा मकाम है, इतना दूर है अर्श पे, अर्श कितना दूर होगा अल्लाह का, कहाँ आसमान, आसमानों की बुलंदियां, सात आसमान, उससे भी ऊपर के जाके अर्श, जिस तक किसी के पहुंच नहीं, कोई नहीं वहां तक जा सकता, फरिश्ते भी नहीं जा सकते, यानी एक मकाम से आगे, और येट तू इतना करीब कि मेरी शारक से भी ज्यादा करीब। तो ये महसूस करने की बात। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये तो आप समझ रहे ना कि फिजिकली नहीं, मतलब कि अल्लाह ताला फिजिकली इस तरह से करीब, वो अपने इल्म के लिहाज से, अपनी कुदरत के लिहाज से, अपनी समात बसारत के लिहाज से इतना करीब है इंसान के। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो उसको उसके कुर्ब का तो शौक होता है और उसके कुर्ब से उसको लज्जत महसूस होती है ना। इंसान जब जो इतना करीब है फिर उसको क्यों ना अपनी बात सुनाए, किसी और को सुनाने के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा, कोई कोई पापड़ बेलने पड़ेंगे, कोई गाड़ी चाहिए, कोई या फोन चाहिए बात करने के लिए। जो कहता है मैं इतना ज्यादा करीब हूँ, उसको छोड़ के इंसान अपनी हाजतें किसी और के पास लेकर जाए, अपने दुख किसी और को सुनाए, अपनी मुश्किलें किसी और को बताए, क्यों सोचे कि अल्लाह को नहीं है, फलां के पास मैं जाऊं और वो मुझे आगे मेरी अल्लाह तक पहुंचाए। अल्लाह तो खुद फरमा रहा है कि मैं इतनी करीब हूं, तुम तो उसको छोड़ छोड़ के औरों के पास जाते हो और उस तक पहुंचने के लिए तुम तो औरों को वसीला बनाते हो, तो वसीले की जरूरत क्या है जबकि अल्लाह है इतनी करीब तुमसे। इंसानों तक पहुंचने के लिए हाँ वसीला चाहिए होता है बिल्कुल, क्योंकि इंसान मोहताज है। अब मैंने किसी वजीर को पहुंच करनी हो तो उसके सेक्रेटरी के पास जाऊंगी, कोई वो कोई कॉन्टेक्ट बनाऊंगी, कोई किसी को बीच में डालेंगे तो फिर जाके पहुंचा जाएगा, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन ये तो रब है जो इतना करीब है, फिर इसके लिए बीच में सहारों की जरूरत क्या है जो वो खुद फरमा रहा है। तो जो लोग इस तरह से करते हैं कि हम खुद नहीं जा सकते अल्लाह तक, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, और जो ये समझते हैं कि हम बस इनको वसीला बनाएंगे तो हमारे काम बनेंगे, तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया मैं इतनी करीब हूं, तुम्हारी अपनी जान से भी ज्यादा करीब, कोई भी नहीं इतना करीब हो सकता जितना अल्लाह करीब है। तुम्हारी शहरक में तुम्हारा खून दौड़ रहा है ना, जिंदगी है, इस जिंदगी से ज्यादा अल्लाह करीब है। और कुर्ब का तसव्वुर इंसान को सुकून दे देता है कि मैं कहीं पे भी चली जाऊं मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जिसने अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाया होगा ना उसको ये चीज सुकून देगी, है ना। और लेकिन साथ साथ इस बात से डर भी लगता है कि ना लमो मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, कि वो इतनी निगरानी करता है कि ऐसी उसकी निगरानी है कि वसवसे तक को वो पकड़ लेता है। इंसान को उससे डरना भी चाहिए। इंसान हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, नहनु से मुराद ये भी लिया गया है कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह के, अल्लाह के फरिश्ते, नहनु यानी अल्लाह के फरिश्ते इंसान से बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि वो फरिश्ते जो उसके साथ साथ हर वक्त रहते हैं तो वो उसके साथ नहीं कभी किसी वक्त भी छोड़ते, और वो हर टाइम उसकी निगरानी कर रहे हैं। और आगे इसका जिक्र भी आता है, इद यतलक्कल मुतलक्कियानी, जब जा लेते हैं दो लेने वाले, कौन लेने वाले, ये जो दो फरिश्ते हैं, अनिल यमीनी दाई तरफ से, व अनिल शिमाली क़ईद और बाई तरफ से बैठे हैं, ये दो फरिश्ते जो बहुत करीब है, जो इस पे मुसल्लत है, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ, हर कौल और हर फेल को लिखते हैं। और क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये तो पता है कि क्या लिखते हैं, नेकियां और बदियां लिखते हैं, मगर कैसे लिख रहे हैं इसका इंसान नहीं तसव्वुर कर सकता, क्योंकि हम तो एक स्पीड जानते हैं ना किस स्पीड से अब आप लिख रहे हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ लिखते जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फिर भी कई बातें रह जाती। तो लेकिन वो ऐसे हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज भी मुंह से ऐसा नहीं निकलता مگر اس کے پاس ایک محافظ ہے، ایک نگران ہے جو ہر وقت ہر بات کو نوٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو رہ جائے، یعنی ایک ایک حرف ایک ایک لفظ تک، چاہے وہ بے معنی ہے چاہے با معنی ہے، وہ ہر ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے الرٹ ہیں، اور 24/7 کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت وہ انسان سے الگ ہو کے بیٹھ جائے یا تھک جائے یا وہ بریک لے لیں. کتنے زیادہ حاضر باش یہ فرشتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے الرٹ جو فرشتے انسان کے ساتھ لگائے ہیں، تو پھر اس کو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے اپنی بات بولنے سے پہلے. ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور ریکارڈنگ وہ نہیں ہے کہ جو سمجھ لیں کہ انسانوں کے تو کیمرے ہوتے ہیں نا، ایک اینگل سے ریکارڈ کیا تو دوسری طرف سے پتہ نہیں چلا کہ کیا کر گیا، ہر طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ چوکنے ہیں بالکل، گھات لگائے میں عتید ہے نا کہ گھات لگائے میں، ایسے گھات لگائے میں کہ کوئی بات ان سے سلپ ہو نہیں سکتی کہ ان کے پاس سے رہ جائے، لکھی نہیں گئی، بہت سپیڈ میں بول رہا تھا. تاکہ انسان کی ایسی کوئی ایسا لفظ بھی جو انسان ایسے ہی بول جائے اس کو بھی لکھ جاتے ہیں. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو وہ ان ریکارڈڈ چھوڑ جائے. تو اب وہ سوچیں کہ اگر الفاظ لکھ رہے ہیں تو پھر عمل کتنے لکھ رہے ہوں گے نا، عمل بھی تو پھر لکھتے ہوں گے نا، عمل تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مرض الموت میں کرا رہے تھے نا، ہائے ہائے کر رہے تھے، تو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہ جو آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، آپ اس کی جگہ اللہ اللہ کہیں. تو انہوں نے کرانا چھوڑ دیا تھا، اپنی موت کے وقت تک ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی تھی کہ یہ بھی لکھا جائے گا، ہائے ہائے ہم جو بولتے ہیں اوف. حالانکہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ایک ہائے بھی لکھی جاتی ہے، ایک اوف بھی لکھی جاتی ہے، ایک سین منہ سے نکلتی وہ بھی لکھی جاتی ہے. انسان تکلیف کے اندر کوئی ایسی منہ سے بے معنی سی چیز نکالتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے. تو کتنی اس کے بعد انسان کے لیے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسند احمد کی ہے، کہ انسان ایک کلمہ اللہ کی رضا کا کیا گزرتا ہے جس کو وہ کوئی بڑا اجر کا کلمہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضا مندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ چاہے تو قیامت تک کے لیے کسی کے لیے اجر لکھ دے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اس کی وہ بات. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی باتیں کریں جو اس کی رضا کی. اور کوئی برائی کا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا اس طرح بے پرواہی سے کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک یعنی قیامت تک لکھ دیتا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بے پرواہی سے کہا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنی ساری باتیں انسان بے سوچے سمجھے بغیر کسی اس کے منہ سے بولتا چلا جاتا ہے، ایک زبان ہے کہ وہ کینچی کی طرح چلتی چلی جاتی ہے. سورہ حجرات میں ہم نے کتنی ساری زبان کی آفتیں پڑھی کہ ساری زبان کی مصیبتیں ہیں نا. اب وہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات، کیونکہ اس نے کیا کہی سوچ سمجھ کے نہیں کہی، دیکھیں حدیث کے الفاظ بے پرواہی کے ساتھ کیا گزرتا ہے، اس نے ایسے نہیں کہ کوئی شعور کے ساتھ کی، کوئی بڑی سوچ کے کی، کوئی بس ایسے ہی، کیونکہ ہر وقت بولنے کی عادت ہے تو کوئی کچھ نہ کچھ ایسے منہ سے بول دیا، بے پرواہی سے بول دیا، نہ سوچا نہ سمجھا کیا بولنا چاہیے کیا کہنا چاہیے، بس ایسے کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے محفوظ رکھے. تو علقمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد میں بہت ساری باتیں کہنے سے رک گیا، یعنی وہ لوگ اتنا اس چیز کو سیریس لیتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو कि जब किसी बात पे भी पकड़ हो सकती है, ये कुछ किसी बात के ऊपर भी अल्लाह की नाराजगी हो सकती है, तो कहते हैं कितनी बातें ऐसी हैं कि जिनके कहने से मैं रुक गया। तो हमारे लिए भी तो यही बात है ना, ये हदीस हमारे लिए भी तो है ना, तो हम अपनी गुफ्तगू में भी कितनी एहतियात करें, कितना सोच समझ के बोलें। ये बहुत ही डरा देने वाली हदीस है। अल्लाह ना करे किसी को अल्लाह की नाराजगी कयामत तक मिले, अल्लाह ताला हमें अपनी रजा ही अता फरमाए। तो ये अल्लाह ताला ने देखो कैसे इंसान को जकड़ा हुआ है कि दाएं तरफ भी बैठा है जो नेकियां लिख रहा है और बाएं तरफ बैठा है जो बदियां लिख रहा है। जब बंदे से कोई खता होती है तो जो दाएं तरफ वाला है ये कहता है बाएं तरफ वाले से कि ठहर जा, अगर इसने इसी वक्त तौबा कर ली तो इसको ना लिखना, और वो अगर वो तौबा कर लेता है तो फिर वो नहीं लिखता, और अगर वो तौबा नहीं करता तो फिर वो लिख लेता। तो इमाम हसन बसरी फरमाते हैं इस आयत की तिलावत करके कि ऐ इब्ने आदम तेरे लिए तो सहीफा खोल दिया गया और दो बुजुर्ग फरिश्ते तुझ पे मुकर्रर कर दिए गए, एक तेरे दाहिनी तरफ है एक तेरे बाईं तरफ। दाहिनी तरफ वाला तो तेरी नेकियों की हिफाजत करता और बाईं तरफ वाला तेरी बुराइयों को देखता रहता है। अब तू जो चाहे अमल कर, कमी कर या ज्यादती कर, जब तू मरेगा तो ये दफ्तर लपेट कर लपेट दिया जाए। दफ्तर माना क्या, ये जो पूरी तेरी फाइल है ना, ये पूरा रिकॉर्ड जो है ये लपेट दिया जाएगा और तेरे साथ तेरी कब्र में रख दिया जाएगा, और कयामत के दिन जब तू अपनी कब्र से उठेगा तो ये तेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हर इंसान की आमाल नामा जो उसकी शामत आमाल की तफसील जो है हमने उसके गले में लटका दी, और कयामत के दिन अनुखरीजु लहू यौमल कयामत किताब यलकाहू मंशूरा, कयामत के दिन हम उसको निकाल लेंगे, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके सामने उसके आमालनामे को फेंकेगा जिसे वो खुला हुआ पाएगा, और अल्लाह ताला कहेंगे कि आप अपनी किताब को खुद पढ़ ले। कफा भी नफ्सिकल यौम हसीबा, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह की कसम उसने बड़ा ही अदल किया जिसने खुद तुझे ही मुहासिब बना दिया कि तू खुद ही अपना हिसाब कर ले, खुद ही अपने ऊपर देख लो कि तुमने क्या किया, तुम्हें खुद ही अपने करतूत पता चल जाएंगे। इंसान फेयर एनालिसिस करे खुद ही पता चल जाता है कितने पानी है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो कुछ तू भला बुरा कलिमा जुबान से निकालता है वो सब लिख लिया जाता है, यहां तक कि तेरा ये कहना भी लिख दिया जाता है कि मैंने खाया मैंने पिया मैं गया मैं आया मैंने देखा, ये सब कुछ एवरीथिंग। हम कोई बच्चों को बात करें जाओ आओ खाओ पियो, अब ये कोई इसमें नेकी ना बुराई ना कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ बता रहे हैं कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो ना नेकी है ना बुराई है, फिर भी वो लिखी जाती है। फिर जुमेरात वाले दिन इसके अकवाल व अफआल पेश किए जाते हैं, खैर और शर बाकी रख लिया जाता है और बाकी सब कुछ मिटा दिया जाता है, जो बाकी हमारी बातें होती है ना इधर उधर की वो फिर डिलीट कर दी जाती है, सिर्फ नेकी की बात या बदी की बात जो है ना वो, मैंने तो आपको बताया ना कि बदी ने तो मिटना ही नहीं ना, वो तो साथ ही चिमट जाती है, तो वो तो बाकी ही रहेगी और बाकी चीजों को मिटा दिया जाएगा। इसलिए इंसान सोचे कि कितना फिर केयरफुल रहे मुंह से कोई भी बात निकालने से पहले, क्या रखा जाएगा और क्या मिटा दिया जाएगा। और एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया जब मेरा बंदा गुनाह करना चाहे तो उसको फौरन ना लिखो, फिर अगर वो गुनाह कर ले तो उसका एक गुनाह लिखो, और जो वो नेकी करना चाहे तो उसकी एक नेकी लिख लिया करो, और जो वो नेकी का अमल कर ले तो 10 नेकियां लिख लो। कुर्बान जाए ऐसे रहीम रब के ऊपर कि देखो जिसने कहा अगर अगर ये इरादा करता है ना गुनाह का लिखना ना अभी कर ले तो तब एक लिखना। तो ये फिर फरिश्ते हर टाइम इस चीज के लिए अलर्ट रहते हैं लिखने के लिए। सिर्फ दो हालतों में इंसान के साथ नहीं होते, जब वो कजाए हाजत के लिए जाता है और जब वो अपनी बीवी के साथ जमा करता है तो उस वक्त फिर ये फरिश्ते उससे अलग हो जाते हैं, बाकी हर टाइम ये फरिश्ते उस वक्त भी। लेकिन अगर इंसान कोई ऐसी शार या खैर की बात करता है तो फिर वो उसको लिखते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि उस वक्त इंसान क्या कर रहा है, लेकिन उस वक्त फिर वो आके लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि वो उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने ये लगाई भी है, वो उस वक्त फिर हाजिर होकर वो लिखेंगे। تو کوئی عمل ریکارڈ کے بغیر رہ نہیں رہا ہمارا, یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. انسان کتنا بندھا ہوا ہے سوچیں, کتنا وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا, ہر طرف سے سمجھ لیں کہ اس کو, یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ وہ فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کوئی کندھوں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. بات اس کے اندر یہی سمجھانے کی ہے کہ وہ یعنی انسان کے ساتھ ہے ہر ٹائم, جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا, ایک دائیں ایک بائیں, تو ہر ٹائم وہ ہمارے ساتھ. انسان ان سے ہی حیا کر لیا کر, وہ انسان ان سے بھی نہیں حیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح فرشتوں کے اس میں جکڑا ہوا ہے, حصار میں ہو, کہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا فی اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس, اگر تم استطاعت رکھتے ہو نا کہ تم بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے, تو بھاگ کے دیکھ لو, اس کے لیے بڑا زور لگتا ہے, تم بھاگ نہیں سکتے یہاں سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے, انسان کہیں بھی نہیں اس سے ہل سکتا. تو انسان یہ سوچ کے اپنی زبان کے اوپر یہ بات پتہ یقین ہو جائے نا کہ میرے منہ سے کوئی بھی بات نکلے گی, انہوں نے بس لکھ لی, نوٹ کر. تو یہ جو ہم نے آیتیں پچھلی اس میں پڑھی تھی سورت میں, ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا نا. وہ سارے عمل بھی ہم بے دھیانی میں ہی کرتے ہیں, ایسے بغیر سوچے سمجھے لاپرواہی سے کرتے ہیں. تو یہ جب آیت یاد ہوگی تو پھر ہم اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول رکھ سکیں گے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر. موت کی بے ہوشی حق لے کر آ گئی. کون سا حق لے کر آئی ہے موت کی بے ہوشی؟ یعنی جب موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے انسان کے اوپر, موت کا وقت آتا ہے, تو جو حق ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. حق کون سا حق؟ وہ حق جس کو انسان ساری زندگی جھٹلاتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا, بھاگتا تھا. سکرات, پہلے تو یہ پتا ہے نا آپ کو کہ جو جب بے ہوشی طاری ہونے شروع ہو جاتی, جب یہاں سے دنیا سے کنیکشن کٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا, اور وہاں سے جڑا ہوتا ہے. اب وہ بیچ میں ہے, ابھی یہاں سے وہاں کے مرحلے میں جا رہا ہے, اس کے سامنے سے غیب کے پردے اب ہٹتے جا رہے ہیں. وہ جو ہم نے پیچھے بات کی کہ ریکارڈ تو تیار ہو چکا ہے, اب اس کا آگے کا ٹائم آ گیا. اب قلم رکھ دیا جائے, ایگزام از اوور, امتحان کے ہال سے اب نکلنا ہے. اب وہ نکلنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. یہ جو موت کی بے ہوشی ہے, جو موت کی سختی ہے, جو موت کی تکلیف ہے, ایک تو یہ حق ہے. حق مانا کیا؟ یہ سچائی ہے, ایک یہ ایک ریالٹی ہے. ایسا ہے کہ موت کی تکلیف ہے, موت کی بے ہوشی ہے. تو موت آتی ہے حق لے کر. اب اور اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی وہ چیزیں جن کا آج انسان کو یقین نہیں ہے, جو ہی موت آئے گی تو وہ سب سامنے نظر آنے لگیں گی. وہ سب چیزیں, وہ جو جن پہ انسان, جو اللہ کے وعدے تھے, جن پہ انسان کو بھی سوچتا نہیں تھا, سوچنا نہیں چاہتا تھا, وہ سچائی بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی. انسان کو آگے کے احوال نظر آنے لگیں گے. جنت جہنم کے متعلق جو اس نے باتیں سنی ہوئی تھی وہ ساری لگیں گی کہ وہ تو سچ تھا سب کچھ. آخرت کی باتیں وہ تو ساری سچ تھی. وہ جن باتوں سے میں بے پرواہی کرتی تھی وہ تو سب سچ تھی. جن کو میں اہمیت نہیں دیتی تھی وہ حقیقت تھا. اور انسان کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بے ہوشیاں ہو رہی ہوں گی اس میں وہ حق سامنے آئے گا, تو کیسی انسان کے لیے ایک تکلیف دے وہ بھی حال ہوگا کہ انسان ایک موت کی تکلیف ہے اور سامنے اس کو حق نظر آ رہا ہے. اور اسی سے انسان بدکتا ہے. کیسے بدکتا ہے انسان؟ اس کا ذکر سننا نہیں چاہتا, اس کو سوچنا نہیں چاہتا. موت کی بات اس کے سامنے آئے تو کہتا ہے بس ڈھانے والی بات نہیں کرو, اور کنی کتراتا ہے اس سے. تحید یہی مانا ہے, کنی کترانا, بھاگتا ہے اس سے. देख लेना आज हम कितना इस चीज को समझते हैं कि ये भी एक टॉपिक है जिसको बयान किया जाए। सिर्फ जहां पे कोई मौत का घर हो वहां पे ही मौत का जिक्र हो तो उसको समझा जाता है सही, अदरवाइज उसके अलावा कहीं पे आप मौत का जिक्र करें तो इसको नहुसत एक समझा जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ये वही चीज है ना जिससे तू भागा करता था, वो चाहता था कि ये ना हो, ये मेरे सामने ना आए। अब देखो हकीकत खुल के आ गई। इस आयत से पता चलता है कि उस वक्त से ही आखरत का जहान सामने आ जाता है और वो वक्त गुजर गया जिसमें इंसान अमल कर सके, जिससे जो जिसमें बच सकते थे वो वक्त गुजर गया। अब अमल का वक्त खत्म हो जाता है, अब तो सिर्फ वापसी है ना, अब लौट के घर जाना है। अब देखो हो गया ना वो दरवाजा बंद जिससे तुम अपनी बख्शिश करवा सकते थे, तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वो सब कुछ सच था ना, जो सारी बातें थी वो सब सच थी ना। अल्लाह ताला ने फरमाया जाएत आ चुकी, माजी का ये भी सीगा इस्तेमाल किया गया। अब सोचो अब तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, समझ लो आ चुकी तुम्हारे ऊपर, आप क्या कहोगे? एक एक इस चीज का तस्वुर जो है ना वो भी दिल दहला देने वाला है कि इंसान की ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसान बच नहीं सकता। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया यही इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया और फरमाया कि ये एक ऐसे मौत कह दीजिए, यहूदियों की बात हो रही है, कह दीजिए ए यहूदी अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, इस मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम अगर तुम ये समझते हो कि और वो मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि जो उन्होंने अपने आगे भेजा है। इंसान मौत से भागता इसीलिए कि वो जो उसने आगे भेजा है उसको पता है कि वो काफी नहीं है, उसको मालूम है कि वो नहीं भेजा जो होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाद जो बात सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन, कह दीजिए कि बेशक जिस मौत से तुम भागते थे ना, फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुमको पहुंच के रहेगी, तुम जितना मर्जी भागो तमन्ना करो ना करो तो ये कभी भी नहीं तमन्ना करेंगे लेकिन मौत पहुंच के रहेगी। ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ أَعْلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, फिर तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला है खुले और छुपे का, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम अमल करके आए। तो जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तुमको आके रहेगी, मौत से नहीं बच सकते, तुम सोचते उसे भाग जाओगे कहीं वाली। एक मिसाल है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोमड़ी की मिसाल दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस शख्स की मिसाल जो मौत से भागता है उस लोमड़ी जैसी है जिससे जमीन अपना कर्जा तलब करने लगी और ये उससे भागने लगी। भागते भागते जब ये लोमड़ी थक जाती है और बिल्कुल थक के चिकना चूर हो जाए तो वो अपने भिट में जा घुसी, जो उसकी होती है जगह, उसका घर होता है। जमीन चूंकि वहां पे भी मौजूद थी तो जमीन अपना कर्ज उसे मांग रही है, तो जमीन वहां पे भी है तो उसने लोमड़ी से कहा मेरा कर्ज दे, तो ये वहां से लोमड़ी फिर वहां से भी भागना शुरू हुई, सांस फूला हुआ, बुरा हाल हो रहा है। आखिर यूं ही भागते 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 बेदम होके गिर गई। तो जिस तरह इस लोमड़ी को जमीन से भागने की राहें नहीं मिलती, इसी तरह इंसान को मौत से बचने के रास्ते नहीं मिलते, मौत से बचने के रास्ते बंद है उसके लिए। तो इंसान भाग कहां सकता है इससे? ये मौत की बेहोशी तो यकीनन आएगी, उस वक्त उसके सारे शक दूर हो जाएंगे जिसमें वो दुनिया में मुब्तला था। उस वक्त कहा जाएगा यही है जिससे तू भागता फिरता था, अब वो आ गई है ना तुझे तेरे पास, उसको ना कोई टाल सकता है, ना कोई मुकाबला कर सकता है, ना कोई मदद कर सकता है उस वक्त, ना कोई सिफारिश कर सकता है। हम देखते हैं कि घर वाले इतना रो रहे होते हैं बाज औकात, इस कदर अपने आप को यानी अजियत भी दे रहे होते हैं, कोई टकरे मारता है दीवारों से, तो कोई कपड़े फाड़ लेता है, तो कोई कुछ अपना हाल बना लेता है, इस कदर सदमे में होते हैं कि किसी तरह ये हमारा जाने वाला जाए ना, इसको हम बचा लें, कितना भी पैसा देना पड़े, कितना कुछ कोई पापड़ बेलने पड़े, कहते हैं कहीं दुनिया जहान में कहीं इसकी दवा मिल जाए तो हम वो लेके आ जाएं। डॉक्टरों को बुलाओ, हकीमों को बुलाओ, किसको, पीरों फकीरों, किसी को नहीं छोड़ते, कहते हैं किसी तरह मौत से बचे, इससे भला कोई बच सकता है, ये तो आके रहेगी, मौत नजर तो नहीं आती, मगर जब आती है तो इंसान को ऐसे लगता है जैसे वो गोते खा रहा है, इसकी बेहोशियां है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमाना मौत की डुबकियों से और बेहोशियों में, मेरी मदद फरमाना। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी मौत का जो आलम आया वो भी बहुत सख्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत इस्तराब में, बेचैनी में थे, इतनी बेचैनी थी कि पानी का प्याला साथ रखा होता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ मुबारक डालते थे, चेहरे पे मलते थे, अपनी चादर कभी चेहरे मुबारक पे डालते कभी हटा देते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की गशी तारी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते फरमाते जाते, सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात, सुबहान अल्लाह मौत के लिए बड़ी सख्ती है, मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है। तो इतनी इंसान इस आसाई जिंदगी के बाद इतने जो आने वाले मराहल है ना इनको भूला रहता है। सबसे पहला मरहला इस ये आरामदेह जिंदगी के बाद जो है वो मौत का है, ये वो कड़वा घूंट है जिसको हर एक ने पीना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखे। फिर क्या बात है कि हम लोगों के जनाजे देखते और हमें लगता है कि हमारा जनाजा कभी नहीं उठेगा, लोगों को दफनाते हैं हमें लगता है हमने कब्र में कभी नहीं जाना। कुल्ला शैउन हालिकुन इल्ला वजहु, हर चीज ने हलाक होना सिवाय उसके चेहरे के। जो मरने के बाद जो कैफियत है वो ठीक है, कोई मरने के बाद आके बता तो नहीं सका, लेकिन कुरान और हदीस ने तो हमें बता दिया कि मौत की शिद्दत है, मौत की सख्ती है, उन्हीं से अंदाजा हो जाता है कि दुनिया की जिंदगी की सारी मुसीबतें सारे गम भी इकट्ठे कर लिए जाए मौत की तकलीफ और शिद्दत इससे कहीं ज्यादा है। जब उस वक्त फरिश्ते नजर आने लगेंगे, उस वक्त आलम बरज़ख के हकायक नजर आने लगेंगे, अजाब सवाब का यकीन सही तरीके से उस वक्त ही होगा क्योंकि इंसान सामने देख लेगा, फिर तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कल्ला इज़ा बलगत तराकी वक़ील मन राक वज़न्ना अन्नहु अल-फ़िराक वल्तफ़त अस-साक़ बिस-साक़, जब जान हलक तक पहुंचती है तो कहा जाता है कोई झाड़ फूंक करने वाला, कोई आकर दम बरूद कर दे इस पे, आदमी को पता चल जाता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया। उस वक्त पिंडली के साथ पिंडली मिल जाती है, पिंडली के साथ पिंडली मिल जाने का मतलब ही है कि मौत के वक्त इतनी तकलीफ आती है इंसान के ऊपर और तकलीफ के साथ जान निकलती है। कई लोगों के आपको पता है पेशाब निकल जाते, कई लोगों की जुबान दांत तले दब जाती है, जख्मी हो जाती है, इस कदर उस वक्त तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मौत की तकलीफ बड़ी शदीद है, इसकी हमें कोई परवाह ही नहीं। जिंदगी के आखिरी लम्हात में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक में लुकनत आ गई थी ये मौत की शिद्दत की वजह से, इसकी सख्ती की वजह से, लेकिन देखो इंसान कितना गफलत में पड़ा हुआ है, इतना गाफिल है कि जिंदगी की घड़ियां गुजरती जा रही हैं, दिन माह साल गुजरते जा रहे हैं, लोगों को लोग के पूछो भी कि अगर क्या आपने तैयारी की क्या आप इसे मुकने, कुछ भी नहीं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन माह साल गुजरते जा रहे हैं, बर्थडेज मनाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मौत से कितने करीब आ रहे। आज तो अमल कर सकते हो, आज अमल का दिन है, हिसाब का दिन नहीं है, कल होगा हिसाब का दिन, फिर अमल का दिन गुजर चुका होगा। तो इस दुनिया में तो इंसान कम वक्त रहे या ज्यादा वक्त रहे, एक दिन तो जाना ही, अगले सफर पे रवाना होना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया ना कि ये तो एक सराय है, मुसाफिर की तरह रहो यहाँ पे, मुसाफिर चंद घंटे जैसे किसी जगह पे रहता है, लेकिन इंसान ये चंद घंटों में कितना इसका आदी हो जाता है इस दुनिया का, वो जितना वक्त गुजरता जाता है वो और खुश होता जाता है कि मैं तो जवान हो रहा हूं, हालांकि हर गुजरने वाला मिनट लम्हा तो उसको मौत के करीब कर रहा है। उम्मीदें उसकी जवान होती हैं, ख्वाहिशात और बढ़ती जाती हैं। वो दिन रात एक कर देता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जिंदगी को हसीन बनाने के लिए। 18-18, 20-20 घंटे लोग काम करते हैं, और तब फिर क्या हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। तब इंसान सोचता है अभी तो मैं जवान हूं, तब भी ये हाल होता है, तब तक मौत आ जाती है। लेकिन इंसान यही उससे पहले तक सोचता रहता है अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। उसकी मंसूबे प्लानिंग्स ही नहीं खत्म होती। कोठियां, प्लॉट, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, ये इन्हीं चक्करों में सारी जिंदगी गुजर जाती। कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहूं इसी में। ये इधर उधर लोग मरते रहते हैं, इंसान उनसे ताजियत करता रहता है, और फिर उसके बाद दोबारा वो जिंदगी की गहमा गहमी में डूब जाता है। सोचने की फुर्सत किसको है कि मौत का फरिश्ता मेरे लिए भी कोई पैगाम छोड़ गया कि भाई तुमने भी जाना है। इस चीज की फुर्सत किसको है? जब पैगंबरों को मौत ने नहीं छोड़ा तो मुझे बताएं और कौन बच सकता है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कितना भी बड़ा कोई काफिर हो, मुनकर हो, कोई आज तक झुटला नहीं सका। कोई ये नहीं कह सका था कि नहीं मुझे नहीं मौत आनी। हर शख्स जानता है, हर एक के सर पे ये तलवार लटकी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मौत की तमन्ना ना करो, जानकनी की तकलीफ बड़ी सख्त है। और जितनी शदीद तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, कयामत तक किसी दूसरे इंसान को नहीं होगी। क्योंकि ये हदीस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ शुरू हुई थी तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद तुम्हारे बाप को ऐसी तकलीफ कभी नहीं होगी। तुम्हारे बाप को मौत के वक्त ऐसी तकलीफ हुई जो आइंदा क़यामत तक किसी और को नहीं होगी। इब्ने माजा की है रिवायत। तो फिर बाकी फिर सोचें जरा, जब पैगंबर तक को तकलीफ हुई तो और कौन बच सकता है? अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फातेह मिस्र थे, अपनी जिंदगी में अक्सर ये कहा करते थे तो मुझे तो हैरत होती है इन लोगों के ऊपर, ये इनके होशो हवास मौत के बहुत दुरुस्त होते हैं लेकिन मौत की कोई हकीकत वो नहीं बयान करते, कुछ बताते नहीं है कि क्या उनके ऊपर गुजर रही है। तो जब इनकी खुद की मौत का वक्त आया तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इनको ये बात याद दिलाई कि आप ये कहा करते थे। तो इन्होंने फिर कहा, अमर बिन आस ने ठंडी सांस ली, कहने लगे मौत की कैफियत तो नाकाबिले बयान है, बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है गोया आसमान जमीन पे टूट पड़ा और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पे जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है और पेट में खजूर के खांटे भरे में, और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। ये सहाबी रसूल है, इसी तरह शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है। ये फरमाते हैं मौत का लम्हा दुनिया और आखरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा हौलनाक है, ये आरों के चीरने से ज्यादा अजियतनाक है, ये कैंचियों के काटने से ज्यादा सख्त है, ये हंडियों के उबालने से ज्यादा तकलीफ दे। अगर मुर्दा जिंदा हो के लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद खत्म हो जाए, लोग कभी आराम ही ना कर सके। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज दुआ किया करते थे ना, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैयल मौत, अल्लाह तआला मुझ पे मौत की सख्ती आसान कर दे। इसकी बहुत सख्तियां हैं और ये वो चीज है जो बरहक है, कोई और चीज पता नहीं दुनिया में किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन ये वो चीज है कि जो हर एक के साथ पेश आने वाली है, इससे किसी ने बचना नहीं। ये ऐसी चीज नहीं है जो टल सके, बाकी हर चीज टल सकती है, लेकिन इंसान उसी चीज से सबसे ज्यादा गाफिल है जो कि यकीनी है। तो ठीक है, इंसान भागता रहे फिर ना सुने, ना ये इसकी कोई तैयारी करे और सोचे कि ये ना सुनने से टल जाएगी, तो फिर उस दिन यही कहा जाएगा, यही है ना जिसे तू भागता था, और भाग ले, इसने तो तुझे फिर भी आ पकड़ा। अल्लाह ताला मौत का वक्त भी आसान फरमाए। اللہ موت کا وقت آسان فرمائے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ، موت کو آپ نے کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اپنی جان کو ایسے دیکھا تھا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پہ بھونا جا رہا ہے کہ نہ اس کی جان نکلتی اور نہ کوئی اڑنے کی صورت ہوتی. ایک اور روایت میں ایسی حالت جیسی کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہے. ظاہر ہے ایک ایک پور میں سے، ایک ایک بال میں سے جب جان نکلنی ہو تو وہ کیسی عذیت ہے. تو انسان اس سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرے کہ یا اللہ مجھے موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں میں تو میری مدد کرنا. وہ بے ہوشیاں تو ہیں، اللہ تو اس وقت میری مدد فرمانا. غمرات بھی ہے نا، کہ غمرات ان کی جمع جس کی وجہ سے انسان کی عقل جاتی رہے. اس وقت انسان بالکل عقل ہوش کھو دیتا ہے، ایک بے ہوشی سی تاری ہو جاتی ہے. تو انسان تھوڑی دیر کے لیے، تو جب کسی بھی موت کا سنتا ہے، قبر میں اتارنے کا سنتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، لرزہ تاری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسی زندگی میں اور اسی ڈگر پہ چلنے لگتا ہے. اور اس کا ذکر بار بار کرنا بھی نہیں چاہتا میں، تاکہ مزے نہ خراب ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتوں بتا دیا ہے، جس کا ذکر نہیں سننا چاہتے تھے، اس کی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے ہی تمہیں گھیر لیا. اگر انسان اپنے آپ کو درست نہ کرے اس دن کے آنے سے پہلے، تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا. اس سے پہلے ہم نے اپنی تیاری کرنی، اور یہ جو ہمیں مہینہ ملا ہے اس کو ہمیں قدر کرتے ہوئے اس مہینے میں اپنی بخشش کروانی، اپنے رب کو راضی کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت چلائیں انشاءاللہ ان آیات کی.
افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.